इशिका और अभिमन्यु दोनों गोवा लौट आए थे। उन्होंने इस बारे में पहले नहीं बताया था। वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे। जैसे ही वसुधा और राधिका ने उन्हें देखा तो वे दोनों बहुत खुश हुईं। वहीं उन्हें वहां देखकर उर्वशी, नकुल और नायरा के मुंह बन गए थे। अचानक पार्थ वहां पहुंचा। उसे वहां देखकर वे सभी चौंक गए। ऊपर से पार्थ ने अपना परिचय पार्थ राजवंश के तौर पर दिया। एक पल के लिए उन सबको लगा कि वो नायरा की तरह नकुल का नाजायज बेटा है। वहां हो रहे तमाशे को सुनकर पूरी राजवंश फैमिली एक साथ इकट्ठी हो गई थी, सिवाय प्रशांत को छोड़कर। वो इस वक्त बाहर थे। इस बीच इशिका को याद आया, जब वो पार्थ के केबिन में पहुंची थी तो पार्थ अपनी ना से अपने हक को लेकर बहस कर रहा था। इशिका ने तुरंत पार्थ से पूछा, उस दिन तुम कॉल पर अपना हक लेने की बात कह रहे थे, तो क्या वो राजवंश फैमिली के बारे में था? येस ऑफ कोर्स, आई मस्ट से मिस सिंघानिया, आपकी याददाश्त काफी अच्छी है, पार्थ ने जवाब दिया। फिर वो वसुधा की तरफ देखकर बोला, देखकर अच्छा लगा, आप बिल्कुल ठीक हैं दादी। उम्मीद है इस घर के बाकी बच्चों की तरह मेरा हक मुझे भी मेरा हक दिया जाएगा। उसके लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम राजवंश खानदान के बेटे हो, वसुधा ने जवाब दिया। फिर वो नकुल को देखकर आंखें तरेर कर बोली, और ऐसे ही कितने बच्चे पैदा करके छोड़ रखे हैं तुमने? अभी बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि हर दूसरे दिन यहाँ कोई भी आकर अपना हक मांगने लगे। उर्वशी को भी नकुल पर गुस्सा आ रहा था। नायरा को वो मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी, जबकि यहाँ एक और लड़का आकर खड़ा हो गया था। पार्थ की जगह कोई लड़की होती तो बात अलग थी। पार्थ के लड़का होने की वजह से सीधे सीधे बात नक्श के हक पर आ रही थी। ऐसे में उर्वशी शांत नहीं बैठ सकती थी। उर्वशी वसुधा के पास जाकर खड़ी हो गई। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो मेरे लिए भी बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा है। आखिर कब तक मैं आपकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रहूंगी? पहले ही मेरे बेटे को उसकी पोजीशन नहीं मिल पा रही है, ऊपर से हर दूसरे दिन आपकी नाजायज़ औलाद यहाँ आकर खड़ी हो जाती है। नाजायज़ शब्द ऐसा था जो किसी के दिल पर सीधा वार करता था। इशिका को इस शब्द से चिढ़ थी, तो वहीं नायरा को भी ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। नायरा इस बारे में कुछ बोलती उससे पहले इशिका बोल पड़ी, भाभी ये आप कैसी बात कर रही हैं? अगर पार्थ या नायरा उनके बच्चे हैं भी तो इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपको अपने पति की गलती दिखाई क्यों नहीं दे रही है जो आप इनके ऊपर उंगली उठा रही हैं? इशिका के बीच में बोलने पर उर्वशी भी चिढ़ते हुए बोली, तुम तो बीच में बोलना बंद ही करो। आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वजह से कर रही हो क्योंकि तुम राधिका जी की बेटी हो। कभी राधिका जी से पूछा है कि उन्हें मालविका और तुम्हें उस घर में देखकर कैसा लगता होगा? राधिका ने तुरंत उसकी बात के जवाब में कहा, मुझे कैसा भी लगता हो लेकिन मैंने इशिका के सामने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे जिससे उसका दिल दुखे। आप महान हैं लेकिन मैं नहीं, और आप इतनी ही महान हैं तो आयशा को बाहर क्यों नहीं निकाल लेती? उसे क्यों वहां पागलखाने में सड़ने के लिए छोड़ रखा है? आयशा को माफ़ करके अपनी बेटी का दर्जा दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगी कि हाँ सच में आप महान हैं, और आपसे कुछ सीखते हुए मैं भी इन दोनों बच्चों को अपनाने की कोशिश करूंगी, उर्वशी ने गुस्से में झल्लाते हुए जवाब दिया। अपने गुस्से में उर्वशी कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। यहाँ उसने आयशा तक का जिक्र किया था जो उसने पूरी तरह अनजाने में बोला था। उर्वशी आयशा को बाहर निकालने की बात कह रही थी। ये सुनकर वे सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, खासकर नक्श। उसकी आंखों में गुस्सा था। नक्श ने चिढ़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया मॉम, आप यहाँ आयशा की बात क्यों कर रही हैं? वो बिल्कुल सही जगह पर है, और आप उसे बाहर निकालने का कह भी कैसे सकती हैं? उर्वशी की बातें सुनकर कोई और समझे या ना समझे, लेकिन अभिमन्यु को शक हो गया था। अगर उर्वशी आज आयशा का जिक्र कर रही है तो वो ऐसे ही नहीं बोल रही। अभिमन्यु ने उर्वशी से कहा, मिसेज राजवंश, अगर मुझे पता चला कि उर्वशी से मिलने के लिए कोई पहुंचा है या वो पागलखाने से गायब हुई है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी मैं पता लगा लूंगा कि पिछले दिनों उससे मिलने के लिए कौन पहुंचा था। अब तो तुम्हें पता लगा ही लेना चाहिए अभिमन्यु, क्योंकि कल से उर्वशी जी कुछ ज्यादा ही आयशा के बारे में सोच रही हैं। न जाने अचानक वो ये क्यों चाहती हैं कि मैं आयशा को माफ कर दूं और उसे घर लाकर अपनी बेटी की तरह रखूं। समझ नहीं आता कि ये प्यार और फिक्र तब कहां गई थी जब आयशा और नक्श का तलाक हुआ था, राधिका ने उर्वशी को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। उर्वशी ने आयशा को लेकर जो प्लान बनाया था वो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही ठप हो गया था। राधिका आयशा को माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऊपर से नक्श भी आयशा के नाम से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। अचानक सारा टॉपिक पार्थ से हटकर आयशा पर आ गया था। इस बीच मौका देखकर नायरा पार्थ के पास जाकर खड़ी हो गई। पार्थ बिना कुछ बोले होंठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए उनके ड्रामे को एंजॉय कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नायरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी स्माइल देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि इस ड्रामे को तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो। वैसे बता दूं ये नया नहीं है, ये राजवंश फैमिली है, यहाँ हर दूसरे दिन इसी तरह के तमाशे होते रहते हैं। पार्थ ने उसे देखकर कंधे उचका दिए थे। फिर वो इशिका से तेज आवाज में बोला, यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों तक मैंने ये ड्रामा मिस कर दिया, मुझे बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम लोग तो काफी एंजॉय करते होंगे ना, टाइम पास के लिए किसी वेब सीरीज देखने या म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अभिमन्यु ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और कहा, बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंचे, वो भी हमारे साथ ही। ये तो नहीं कि तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हो और जानबूझकर ड्रामा कर रहे हो। अरे नहीं, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन लगता है इस फैमिली की एक भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं आई है, पार्थ ने भौहें उठाकर कहा। पार्थ के बात करने की वजह से सबका ध्यान वापस उसकी तरफ चला गया। उर्वशी उसके पास गई और बोली, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मुझे भी तो पता चले कि इस बार इस आदमी ने किसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करोगी? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। जो भी किया है वो खुलेआम किया है। मेरे नायवा और नक्श के अलावा और कोई बच्चा नहीं है। मुझे नहीं पता ये कौन है, नकुल चिढ़ते हुए बोला। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये अभिमन्यु की उम्र का लगने वाला लड़का उसी का बेटा है? उर्वशी ने आंखें तरेर कर कहा। वे दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी पार्थ ने गहरी सांस ली और बोरियत भरे लहजे में कहा, अब बस भी कीजिए, ओवर ड्रामा भी बोर करता है। वैसे आपको बता दूं कि मैं इनका बेटा बिल्कुल नहीं हूं। पार्थ के ये बताते ही कि वो नकुल का बेटा नहीं है, नकुल ने राहत की सांस ली और पार्थ से बोला, थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। ये बात तुम पहले भी बता सकते थे, मुझे इन लोगों की इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। अगर पहले बता देता तो ये ड्रामा एंजॉय करने का मौका कहाँ मिलता, पार्थ बोला। पार्थ ने यह तो बता दिया था कि वो नकुल का बेटा नहीं है, लेकिन अभी भी ये सवाल था कि अगर वो नकुल का बेटा नहीं है तो आखिर राजवंश फैमिली में वो किसका खून था? पार्थ भले ही नकुल का बेटा ना हो, लेकिन था तो राजवंश फैमिली का ही खून। अगर शेयर्स का बंटवारा होगा तो नकुल और नक्श के हिस्से के शेयर्स कम हो जाते। अभिमन्यु फिर भी सीईओ की पोजीशन पर ही रहता, लेकिन बंटवारे के बाद नकुल और नक्श की पोजीशन और नीचे गिर जाती।
उर्वशी ने पार्थ से पूछा, ये अच्छी बात है कि तुम नकुल के नाजायज बेटे नहीं हो, लेकिन किसके नाजायज बेटे हो ये भी बता दो। लगता है नाजायज शब्द इस फैमिली का कुछ ज्यादा ही फेवरेट है जो बार बार यूज किया जा रहा है, पार्थ ने सर्द आवाज में कहा। अब तक भले ही वो इस ड्रामे और बाकी चीजों को काफी लाइटली ले रहा था, लेकिन सवाल अब उस पर खड़े हो रहे थे जो पार्थ को कभी बर्दाश्त नहीं था। वो लोग बातें कर रहे थे, इस बीच गाड़ी की आवाज आई। प्रशांत वहां पहुंच गए थे। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पार्थ ने एक नज़र प्रशांत की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, मैं इस घर की जायज औलाद हूँ। मेरी माँ का नाम जानना चाहते थे ना आप? मेरी माँ का नाम सुनैना रायचंद है। डैड का नाम तो आप अच्छे से जान गए होंगे ना, मिस्टर नकुल राजवंश? सुनैना का नाम सुनकर नकुल के मुंह से निकला, माँ। सुनैना रायचंद का नाम सुनकर नकुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ का नाम था। इसका मतलब पार्थ प्रशांत का ही दूसरा बेटा था, जिसके बारे में ना तो राजवंश फैमिली जानती थी और ना ही खुद प्रशांत। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही। आपने कहा था कि अगर पार्थ मेन विलेन पार्ट है तो आयशा को हटा दो, तो ठीक है, मैंने आयशा का जिक्र किया है तो अब थोड़े बहुत हल्के फुल्के सीन्स आ जाएंगे, पर उसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे। दूसरा, पार्थ का अब इंट्रोडक्शन हो गया है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कौन है और उसके आने से इन सब की ज़िंदगी में कैसे हलचल मचने वाली है।